والصلاة والسلام على سيد الأنبياء بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. صلوات پڑھے محمد والے. آج سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ سے قرآن کریم کی 26ویں سورہ سورۃ الشعراء کی آیات میں تدبر، یعنی ان آیات کو کس طرح پڑھا جائے اور ان میں بیان کردہ باتوں کو کس طرح اچھے طریقے سے سمجھا جائے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ نقطہ آپ کے ذہنوں میں رہے، جیسا کہ بڑے علماء نے، جن میں سے سر فہرست آپ یوں کہیں موجودہ انقلاب اسلامی کے رہبر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی، انہوں نے کیونکہ قرآن کریم پر بہت توجہ ہے ان کی، اور خاص طور پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات میں تدبر کا جو معاملہ ہے وہ معاشرے کے تمام طبقات کے لیے، حتیٰ کہ محنت مزدوری کرنے والے طبقے کے لیے. کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ قرآن کریم کی آیات میں تدبر یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ طبقے کے لوگ نہیں کر سکتے. تو وہ فرماتے ہیں کہ حوضات ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، اور تاجر ہوں، سرکاری افسر ہوں، نوکری پیشہ لوگ ہوں، محنت مزدوری کرنے والے ہوں، کھیتی باڑی کرنے والے ہوں، ہر ایک انسان کا جو خود کو مومن کہتا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق، تمسک یہ ضروری ہے. کیونکہ حدیث ثقلین بھی کسی خاص طبقے کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں بولی تھی، ساری امت کے لیے فرمائی تھی. تو اہم نقطہ جو وہ تدبر کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات میں تدبر کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے روایات اور احادیث کی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ تدبر کس چیز کا نام ہے؟ آپ ہیں اور ایک کلام ہے آپ کے سامنے، آپ ہیں اور ایک لکھا ہوا متن ہے آپ کے سامنے. تو آپ اس لکھنے والے کے جملوں کو دیکھتے ہیں اور اس جملے کو آپ، جسے ہم پڑھنا کہتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اور اس پڑھنے کے نتیجے میں لکھنے والے نے جو بات آپ سے کرنی چاہی ہے وہ آپ کے ذہن میں منتقل ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتی ہے. اور بعض اوقات سرسری پڑھنے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ذرا غور سے، دقت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے چند مرتبہ دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد اس عبارت کا معنی واضح ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں تدبر. اس کے لیے کوئی اور ہیلپ یا گائیڈ لائن روایات احادیث اس مرحلے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں نے ایک جملہ سنا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے کہ قرآن فرامین اہل بیت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ جملہ ایک صحیح معنی رکھتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ایک انتہائی غلط اور باطل معنی بھی اس جملے سے نکالا جاتا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ وہی باطل معنی لوگوں کے، عوام الناس کے ذہنوں میں. صحیح معنی کون سا ہے اور باطل معنی کون سا؟ قرآن فرامین اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ قرآن کے بہت سارے موضوعات جب تک روایات سے ان کی وضاحت پتہ نہ چلے، ہم قرآن میں دیے گئے اس حکم پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے. سب سے بڑی مثال خود نماز کی ہے. پورے قرآن میں نماز کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت، جس کو اقیم الصلاۃ سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن کوئی پورا قرآن چھان مارے، بہت باریک بینی سے پڑھے، تب بھی وہ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ قرآن سے نہیں جان سکتا، ہے ہی نہیں کہ پہلے کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر ایک اور سورۃ پڑھنی ہے، پھر رکوع ہوگا. کہاں سے پتہ پہلے رکوع، پہلے سجدہ کر لو بعد میں رکوع، کہاں سے پتہ چلے دو سجدے ہوں گے، دوسری رکعت میں ایک تشہد ہوگا، چار رکعتیں ہوں گی، دو رکعتیں ہوں گی، تین رکعتیں ہوں گی، کہیں نہیں ہے قرآن. تو صحیح معنی کیا ہے کہ قرآن کے جو موضوعات تفصیل چاہتے ہیں کہ اس تفصیل کے بغیر ہم قرآن میں دیے گئے حکم پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، جس چیز کا مطالبہ ہم سے اللہ نے کیا ہے ہم نہیں کر سکتے صرف قرآن پر اکتفا کر کے، تو وہاں پر ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. کہاں؟ اللہ کے نبی کے فرمان، اور مکتب اہل بیت والوں کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اہل بیت نبی کے فرامین کی طرف ہم رجوع کریں گے، اور وہ طریقہ اپنائیں گے ان احکام کو انجام دینے کا جو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے. لیکن جتنی بات قرآن سے واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے وہ اٹل ہے. غور فرمائیں، جتنی بات، جس حد تک بات قرآن کے الفاظ پڑھنے سے سمجھ آ رہی ہے، اس کو مزید واضح کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. مثلا اللہ فرمائے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی باتوں میں، اس کی معلومات اوتھینٹک ہے، اس کی کہیں اور جا کے تصدیق کروانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اس شخص کے لیے جو قرآن پر بطور اللہ کی کتاب کے ایمان رکھتا ہے. اسی بات کو مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد پھر کوئی فاقہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بات تمہیں قرآن سے پتہ چل گئی ہے، اب تمہیں کوئی محتاجی نہیں ہے کہیں اور سے جا کے تصدیق کراؤ اس کی. بلکہ کل آپ نے وہ روایت سنی تھی کہ جس میں امام فرماتے ہیں ہم تم سے جو بات کریں ہم سے بھی قرآنی دلیل کا مطالبہ کرو کہ قرآن میں کیا لکھا ہو. یہ ہے اس کا صحیح معنی. دوبارہ دہرا دوں، قرآن اہل بیت کے فرامین کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اس کا معنی کیا ہے کہ قرآن میں جتنی بات بیان ہوئی ہے، جو سمجھ آ رہی ہے واضح، وہ اٹل ہے، وہی اللہ کا حکم ہے، لیکن उसकी तफसीलात, जैसे नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, हज तफसील के साथ कैसे अदा किया जाएगा, रोज़े के क्या अहकाम व मसाइल होंगे, ज़कात और खुम्स के क्या अहकाम व मसाइल होंगे, अल्लाह की किताब में इनका ज़िक्र तो आया है लेकिन इनकी तफसीलात नहीं आई, जबकि सारी उम्मत को पता है कि तफसीलात की ज़रूरत है। वो तफसीलात कहाँ से मिलेंगी? उसके लिए हम रुजू करेंगे फरामीन रसूलुल्लाह और फरामीन अहल बैत से। बातिल माना उसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। और ये भी आपको बता दूं कि एक बड़ा तबका है जिन्हें अखबारी कहा जाता है, उसकी बुनियाद ही इस पर कायम है कि हम सिर्फ रिवायत देखेंगे, आयात कुरान से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। हालांकि इस मामले में जालिम है, क्योंकि ये फिर उन रिवायात को भी फरामोश कर देते हैं कि जो रिवायात और वो दसियों हैं जो ये कह रही हैं बार बार कि जो भी बात अल्लाह के रसूल से या आइमा अहले बैत से तुम तक पहुँचे, पहले देखो कि कुरान की मुखालफत ना हो। कुरान की मुखालफत नहीं हो रही फिर कबूल करो हमारे फरमान के तौर पर, कुरान की मुखालफत हो रही है वो हमने बात नहीं की, वो किसी झूठे ने हमारे नाम पर घड़ी। ये फॉर्मूला दिया और फरमाया जिसने ये न किया वो गुमराही से, वो फितनों से नहीं बचेगा। ये उसूल काफी के मुकदमे में रिवायत है, मन लम याखुद अमरना मिन अल कुरान लम यतनक बिल फितन, जिसने हमारे अम्र को कुरान से ना लिया वो फितनों से गुमराहियों से नहीं बचेगा। जिसकी दीन की सोर्स में कुरान बुनियाद नहीं है, उसको जो हमारे नाम पे बताया जा रहा है वो समझ रहा है ये उन्होंने फरमाया है, तो वो गुमराही से नहीं बचेगा क्योंकि हमारे नाम पे लोग झूठ बोलेंगे। कौन बचेगा? जो पहले देखे अल्लाह की किताब का जो बयान है इस मामले में वो बयान और ये जो मुझे रिवायत के नाम पे चीज़ बताई जा रही है ये आपस में मैच करते हैं या आपस में मुखालफत में? अगर मुखालफत में है तो कुरान वाली बात असल में अहले बैत की बात है, जो दूसरी बात है मुखालफत वाली वो अहले बैत की बात नहीं है। अखबारी हजरात की बुनियाद ये है कि हम कुरान के मुखातब नहीं है, कुरान के मुखातब फकत मासूमीन है, अल्लाह ने उनसे बात की है और हमसे बात उन्होंने की है, हम कुरान से डायरेक्ट इस्तफादा नहीं कर सकते, हमें हतमन रिवायात देखनी पड़ेंगी। लिहाजा मैं चंद साल पहले की बात है नजफ अशरफ गया, वहाँ पर मुझे किसी दोस्त ने बताया कि हमारे एक उस्ताद हैं, हम जाते हैं तो हमें बहरहाल पता चला कि वो अखबारी हैं, तो आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो हम उनके पास गए तो गपशप लगी, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कुरान से कुछ समझ नहीं आता, आप सोचें, कहते नहीं हमें रिवायत देखनी है। तो मैंने उनके सामने मसलन ये आयत आपके सामने पढ़ूँ, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये रोशन किताब की आयात हैं। मैंने कहा इससे कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? उन्होंने कहा नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं आ रहा? कहते नहीं, ये मतलब नहीं है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, लेकिन हमें कहाँ से पता कि जो हमें समझ आ रहा है वो सही है? ये मुकालता देखें आप, ये समझ तो आ रहा है लेकिन हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हम तो देखेंगे इस आयत के नीचे हदीस क्या कह रही है और उसी से हम ये अखबारियत इस उसूल पे कायम। तो फिर आइमा फरमाने के रिवायत को कुरान पर पलटाओ, देखो कुरान की मुखालफत तो नहीं कर रही, तो जब तक मुझे कुरान समझ ना आए तो मुझे कैसे पता चलेगा मुखालफत है या मुखालफत नहीं? कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बहरहाल ये मसला बुनियाद है उस ग्रोह की कि जिनको अखबारी कहा जाता है। और फिर इसी तबके में ज़्यादा वो अंसर है कि जो इस बात के कायल है कि कुरान मजीद में तहरीफ हुई है, कुरान मजीद कम हुआ है। वो जो आजकल साहब सोशल मीडिया पे बहुत आते हैं जनाब अल्लाह यारी साहब, वो कुरान की तहरीफ के कायल है, कुरान की के नाकिस होने का कायल है। अच्छे बहुत सारे लोग उनको इसलिए बड़ा मोहब्बत देते हैं क्योंकि वो अहले सुन्नत को अच्छा रगड़ा लगा रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उसके ज़िम्न में और क्या क्या वो दिमागों में डाल रहे हैं। चूँकि अगर आप तवज्जो फरमाएं, कुरान और अहले बैत दो सुतून है ना दीन के, अल्लाह का नबी फरमा, जब अल्लाह का नबी फरमा गया मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ तुम्हें दोनों से तमस्सुक करना है, तो यहीं से अखबारियत ख़त्म हो जाती है। इस शक्ल में कुरान से भी तमस्सुक करना है, तो जब कुरान से कुछ पले नहीं पड़ता तो क्या तमस्सुक करना है, पढ़ के सवाब लेना सिर्फ। तमस्सुक का माना है जो वो कह रहे हैं, और फिर फरमाया कि इसके खिलाफ कबूल नहीं करना, कुरान की तरफ रेफर करके गए। तो इनसे जब ये सवाल किया जाए तो ये मुख्तलिफ किस्म की, जैसे कहते हैं ना, वो इल्मी कलाबाजियाँ लगाते हैं और उसकी तरफ नहीं आते, चूँकि इनकी बुनियाद इस पर है। और ये कहते हैं कि कुरान मजीद में ज़्यादती नहीं हुई लेकिन कमी हुई है। कुरान मजीद जो हमारे पास जो है मौजूद वो वही है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इसमें से निकल गया है। ये इनका मुद्दा है कि ज़ाहिर है इसकी अपनी तफसीलात हैं, उनके दलाइल हैं, उन दलाइल के जवाबात हैं कि जिसका ये मौका नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। खुलासा ये कि ये अहदीस को दलील बनाते हैं, लेकिन जो अहदीस इन्हीं के नज़रिए के ख़िलाफ़ पुकार कर कह रही है कि कुरान के ख़िलाफ़ कबूल मत करो, उनके उनसे चश्मपोशी करते हैं, उनकी तरफ नहीं देखते। वरना ये कहते हैं कि हदीस की सनद पर कोई बहस ही नहीं, जो हदीस की किताबों में आया सब सही है। बुनियाद इनकी इस पर कायम। तो बस ये दो माने हो गए। एक माना क्या है, कुरान अहले, जुमला क्या था जिसके दो माने, एक बातिल और एक सही। जुमला ये है कि कुरान अहले बैत के फरामीन के बगैर समझ में नहीं आ सकता। इसका बातिल माना क्या है कि कुरान गूंगा है, हमें उसकी कोई बात समझ में नहीं आ सकती, कुछ आए भी तो हम नहीं कह सकते कि यही मुराद है। ठीक है, तो ये कुरान में तदब्बुर और कुरान में गौर व फिक्र ये उनके लिए कोई चीज़ कोई हैसियत नहीं रखता। सही माना क्या है कि कुरान में जितनी बात वाज़े समझ आ रही है वो अटल है, वो अल्लाह का बयान है। हाँ, उसकी तफसीलात, कोई हुक्म है तो उस पर अमल कैसे किया जाएगा, जो कुरान ने तफसीलात बयान नहीं फरमाई वो हम उनके लिए रजू कहाँ करेंगे, सुन्नत रसूल से, जो कि अल्लाह के नबी के फरामीन और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन पर मुश्तमिल है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। रहमान रहीम अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन मीम ये पहली आयत है, इन्हें हुरूफ मुकत्तआत कहते हैं कि जो असरार हैं अल्लाह के पास और अल्लाह के बरगुजीदा बंदों के पास। आयत नंबर दो। अब आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यानी मेरा हदफ और मकसद ये नहीं है कि वन साइडेड, मतलब मैं बोलता जाऊं और बस आप सुनते जाएं, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये है कि उस तरीके से पढूं कि जो तरीका आप ख़ुद भी अप्लाई करें अपने कुरान पढ़ने के दरमियान, कि कुरान की आयात को कैसे पढ़ा जाए घर में, कैसे गौर व फिक्र किया जाए। और आप जितना गौर करेंगे आप देखेंगे कि बज़ाहिर दो जुमलों में राबता नहीं निकल रहा था, लग रहा था, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो वो राबता आपको मिल जाएगा कि इन दो जुमलों का आपस में लिंक क्या है। आयत नंबर दो। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। तिल्क इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी दूर के इशारे के लिए, और वो भी मुअन्नस के लिए। तिल्क आयातुल किताब, इसका लफ्जी तर्जमा क्या है, वो दूर इशारा किया जा रहा है, वो किताब की आयात है। जबकि आप कोई भी तर्जमा पढ़ेंगे तो लिखा होगा ये किताब की आयात। ये मैंने आपको बयान तो नहीं किया, ये और वो का फ़र्क बयान किया यहाँ पर या बयान नहीं किया? बयान नहीं किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक साहब मुझे मिले जिनको कोई हेरा फेरी करने वाला टकर गया था, मुझे कहते हैं कि जो कुरान है इसको जब शुरू करते हैं हम तो लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये तो इस किताब की तरफ इशारा ही नहीं, क्योंकि अगर इस किताब की तरफ हो तुम्हारे हाथों में तो अल्लाह कहता है ये किताब, तो अल्लाह तो कह रहा है वो किताब, आप वो किताब बताओ कौन सी है, ये किताब मोरद नज़र नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं, ये और वो का चक्कर क्या? ये अरबी में भी है और कोई चक्कर नहीं है, बड़ा नॉर्मल इस्तेमाल है, अरबी में भी है और उर्दू ज़बान में भी है। बाज़ औक़ात कोई चीज़ या कोई इंसान हमारे करीब बैठा है लेकिन हम उसके लिए दूर वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देता हूँ, आप इंशाल्लाह ज़हन आपके करीब आ जाएंगे कि आप किसी प्रोग्राम में स्टेज सेक्रेटरी हो और आपके साथ ही आप अनाउंसमेंट करने लगे हैं रोस्टरम पर खड़े होकर, और आपके बिल्कुल पहलू में साथ कुर्सी पर एक कोई कौमी हीरो बैठा हुआ है, कौमी हीरो बैठा हुआ है और आपने उसको अब अनाउंस करना है, उसको स्टेज पर बुलाना है कि वो स्पीच करे, बैठा हुआ आपके बिल्कुल साथ है, लेकिन आप अनाउंसमेंट क्या करते हो? आप कहते हो सामईन अब मैं आपके सामने उस अजीम हस्ती को बुला रहा हूँ, हालांकि है वो इस यहाँ बैठा हुआ। जब नज़दीक काम कहते हैं तो इस कहते हैं और दूर कहना हो तो उस कहते हैं, ऐसा ही है ना उर्दू, इस उस। अब ये इस है लेकिन ये बंदा कह रहा है, अनाउंस कर रहा है, सामईन मैं आपके सामने उस अजीम हस्ती को बुलाने जा रहा हूँ। आपने कभी सोचा ये इस को उस क्यों कहता है? जब फासला नहीं है तो ये उस, ये जो उस है ये किस फासले की तरफ इशारा कर रहा है? वो कहना चाह रहा होता है कि हम लोगों और इसके दरमियान मकाम का बहुत फासला है, ये बहुत अजीम है, तो इसकी अजमत के सबब इसके लिए इसका लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता बल्कि ठीक है, या कहता है आपके सामने अब वो अजीम हस्ती आ रही है, जबकि ये बैठा होता है, वो नहीं होता। क्यों? ये जो वो है दूर की तरफ इशारा, ये उसके मकाम की अजमत बताने के लिए, वरना और ये अगर कहे तो ये में वो बात नहीं है। तो ये जो अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताब, ये कुरान की अजमत की तरफ इशारा है कि ये जो तुम्हारे पास किताब है अपनी अजमत के एतबार से बहुत बुलंद है, बहुत फासला है, बहुत ऊंची है। तो किताब चूंकि मुजक्कर है ज़ालिका का लफ्ज़ है, और आयात क्योंकि मुअन्नस है तिलका का लफ्ज़ है, मुजक्कर की तरफ दूर के इशारे के लिए ज़ालिका इस्तेमाल होता है, मुअन्नस की तरफ इशारे के लिए तिलका इस्तेमाल होता है। तो इंशाअल्लाह ये बात आपके जहनों में वाज़ेह है, कुरान में कई जगहों पर ज़ालिका और तिलका, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, अब तर्जमा क्या करेंगे, आप जो भी तर्जमा पढ़ेंगे ये लिखा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे तर्जमे वाला लिख दे वो किताब मुबीन की आयात है तो पढ़ने वाला कहेगा ये किताब तो ये है तो फिर वो क्यों कह रहा है, फिर उसको नीचे चंद लाइनों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। तो अरबी ज़ुबान में मानी बयान का एक इल्म है जो बाकायदा पढ़ाया जाता है, उसमें बिल्कुल इब्तदाई सी बातों में ये बात इन अल्फाज का इस्तेमाल कि इशारा दूर का है चीज़ करीब ही है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह उसकी अजमत और मकाम का बयान होता है। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात हैं एक ऐसी किताब की जो रोशन है, जो वाज़ह है। मुबीन का माना ये। आयत नंबर 3, لعلك باخع نفسك, तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से खिताब फरमा रहे हैं। और वो खिताब क्या है? शायद لعلك, शायद आप باخع نفسك अपनी जान को ख़त्म कर देंगे, अपने आप को मार डालेंगे। किस वजह से? अल्लाह यकूनु मुमिनीन, कि ये क्यों मोमिन नहीं बनते। अल्लाह का नबी तबलीग फरमाता है, बहुत सारे लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह के नबी को मालूम है कि ईमान ना लाने का अंजाम क्या है। वो इनकी निजात की इतनी तड़प रखते हैं। अब आप अंदाज़ा करें, इसी जुमले से अल्लाह के अंदाज़ा करें कि रसूलुल्लाह की क्या कैफियत थी कि अल्लाह को ये कहना पड़ा। आप ख़ुद को मार डालेंगे इस वजह से कि ये ईमान क्यों नहीं लाते। दूसरी जगह पर सूरतुल काहफ में मसलन ये अल्फाज है, लअल्लक बाख़िउ नफ्सका अला आथारिहिम, आप इनके पीछे जा जा के खुद को कत्ल कर देंगे। असफा इल्लम युमिनु बिहादल हदीस, अगर ये इस बात पर ईमान ना लाए, असफन मारे अफसोस के आप खुद को मार डालेंगे। इनके पीछे चल चल के इस अफसोस में के ये क्यों ईमान नहीं लाते, आप बार बार जाएंगे ताकि ये ईमान लाएं, इस अफसोस में के ईमान नहीं लाते आप खुद को मार डालेंगे। आप इन अल्फाज से तसव्वुर करें रसूलुल्लाह की कैफियत क्या थी तबलीग के वक्त। इसकी मिसाल मैं दूं आपको कि फर्ज करें एक माँ है और उसका बच्चा उसके सामने बहुत बीमार पड़ा हुआ, इतना बीमार है कि लगता है कि शायद दुनिया से चला जाए। अब बीमार वो है लेकिन माँ उसकी बीमारी की परेशानी में कि सेहत याब क्यों नहीं हो रहा, खाना पीना छोड़ दे, खुद कमज़ोर हो जाए, खुद बीमार हो जाए, तो देखने वाले क्या कहेंगे कि बच्चा तो बीमार है लेकिन इसकी टेंशन में तू खुद को मार डालेगी। और ये तभी होता है जब दोनों के दरमियान बहुत कोई गहरा रिश्ता हो। अल्लाह के नबी का जो रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया है ये रिश्ता, आज उस नबी की उम्मत को देखें, पड़ोस वाले को भी चाहते हैं दोजख में जाए, लेकिन अल्लाह का नबी जिनके पीछे जा जा के उनको ईमान की दावत देता था, उनके बारे में दिल में क्या तड़प थी कि अल्लाह फरमा रहा है कि आप खुद को मार डालेंगे। क्या करते होंगे रसूलुल्लाह, कैसी मेहनत करते होंगे, कैसे कोशिशें करते होंगे कि ये लोग ईमान कबूल कर लें। लअल्लका बाख़िउ नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, शायद आप तो खुद को मार ही डालेंगे कि ये लोग मोमिन क्यों नहीं बनते, ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। आयत नंबर 4, ये चौथी भी पढ़ लूँ फिर इनका आपस में लिंक हम डिस्कस करेंगे, इन तीन जुमलों का आपस में क्या रब्ता। गौर फरमाए, वैसे मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मसलन आप खुद बयान कर सकें, ऐसी कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ तवज्जो चाहिए और आपस में लिंक खुद बखुद मिल जाता है और फिर पूरी बात समझ आती है। आयत नंबर 4 आप समाप्त फरमाएं, इन नशा अगर हम चाहते नुनज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन, हम नाजिल कर देते, अगर हम चाहते हम नाजिल कर देते, अलैहिम इन पर जो ईमान नहीं ला रहे, अगर हम चाहते अल्लाह फरमा रहे तो नाजिल कर देते, अलैहिम इन पर मिनस समा आसमान से, आयतन एक निशानी, ऐसी निशानी के जिसके सामने फ़ज़ल्लत अअनाकुहुम लहा खादिईन, कि इनकी गर्दनें उसके सामने झुक जाती, इनकी जुरत ही ना होती ईमान ना लाए। ये अल्लाह अपने रसूल से फरमा रहा है, आप क्यों इतने परेशान हैं, आप क्यों खुद को हलाक करने के करीब इनकी परेशानी में गए खड़े, आपके अल्लाह ने नहीं चाह के सारे ज़बरदस्ती मान लिया, आप क्यों सबको ज़बरदस्ती मोमिन करना चाहते हैं? अगर हम चाहते तो आसमान से एक ऐसी निशानी नाजिल करते कि इन सब की गर्दनें उसके सामने झुक जाती। अल्लाह की असल पावर तो अल्लाह की है ना, जब वो कहता है कुन, तो अल्लाह के कुन के सामने कोई पार नहीं मार सकता। मसलन जिसकी मौत का अल्लाह फैसला कर दे, फिर उसकी मौत को कोई मुअख्खर नहीं कर सकता, चाहे ताकतवर है चाहे कमजोर है। अल्लाह तो इसी तरह अल्लाह फरमा रहा है, ए रसूल अगर हम चाहते तो हम आसमान से, अगर हमने, हमारा मकसद ये होता कि सारे के सारे ईमान ले, हम जबरदस्ती करवा देते इनसे। इस बात को समझिए, अल्लाह को कौन सा ईमान चाहिए? जबरदस्ती वाला नहीं चाहिए। अल्लाह को वो ईमान चाहिए जो इंसान की अक्ल और शऊर ने कबूल किया हो, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी धौंस के अपने शऊर से आजादाना कबूल करे। और यही वो बात है जिसको वो आयतुल कुर्सी में अल्लाह फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती। इसी वजह से जब इस्लाम का गलबा हो गया था तो दूसरों से कहा गया था तुमने एक टैक्स देना है लेकिन तुम अपने दीन पर बाकी रह सकते हो, हुकूमत इस्लामी तुम्हारे हकूक की मुहाफिज है, लिहाजा तुम ये टैक्स दोगे जजिया, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती कोई नहीं कह रहा कि इस्लाम कबूल करो वरना गर्दन तुम्हारी उड़ा देंगे। अहले किताब है तुम मसीही हो, मसीह हो आज़ाद हो, तुम यहूदी हो, जाहिर है जब यहूदी को यहूदी छोड़ा जा रहा है तो वो फिर अपनी इबादत करने में भी आज़ाद है, फिर मसीह भी अपनी इबादत करने में आज़ाद है। मिसाल के तौर पर ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। ये कब ज़बरदस्ती नहीं है? दीन को कबूल करने में कि ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाए। तो अल्लाह के रसूल अगरचे ज़बरदस्ती तो मुसलमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन तड़प इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह ताला ने, कि एक मकाम नहीं है, कुरान मजीद में कई मकामात हैं जहाँ पे अल्लाह ने अपने रसूल से फरमाया कि आप खुद को मार डालेंगे, ये लोग सारे के सारे ईमान क्यों नहीं लाते, आपके रब का ये इरादा है ही नहीं कि इस तरह ये ईमान ले आए, अगर अल्लाह का इरादा होता तो फिर सारे के सारे ईमान ले आते। आप एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ताकि ये मौजू मज़ीद वाज़े हो जाए। और कुरान मजीद की सूरह मुबारका यूनुस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वैसे तो सारी ही, लेकिन ये दो आयात जो आपके सामने पढ़ने लगे उसी से मरबूत है, जो हम सूरह शोरा की आयत पढ़ रहे हैं उस बात को, उस मौजू के, वो मौजू कुरान में कई जगहों पर आया, जब अल्लाह ने ये फरमाया अपने रसूल से कि आप खुद को मार डालेंगे। तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 और आयत नंबर 100, ये बहुत सारे सवालात को जो इंसान के जहन में आते हैं, इंसान मजबूर है या बाइख्तियार है, और मुझे अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहता हूँ गुमराह करता हूँ, जिसे चाहता हूँ हिदायत करता हूँ, उन सारे सवालात को ये दो आयात का समझ लेना वाज़े और क्लियर कर देता है। लेकिन थोड़ा सा गौर करने से, अब देखें मैं पहले आपके सामने इन दोनों को पढ़ दूं। आयत नंबर 99, अगर सूरह यूनुस 99, वलौ शा रब्बुका, और अगर तेरा रब चाहता, लआमना, तो हतमन ईमान ले आते। कौन? मन फिल अर्द, जो कोई जमीन में है। अगर तेरा रब चाहता तो जो कोई इस जमीन पर है ईमान ले आते, कुल्लुहुम, सारे के सारे, जमीअन, एक साथ। यानी आपका रब अगर कहता कौन इस इरादे से, तो इस रूए जमीन पर जितने इंसान हैं सब सलूट मारते, कहते हम ईमान ले आए और इकट्ठे। अब अगला इस आयत का सुनिए, अफ अंत तुकरिहुन नास, फिर क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे? यानी आपके रब ने तो नहीं चाहा, अगर वो चाहता तो कर देता, तो जब उसने नहीं किया तो आप जबरदस्ती करेंगे। अफअंत तुकरिहु इकराह, वही जो ला इकराह फिद्दीन, अफअंत तुकरिहु नास, तो क्या ए रसूल आप जबरदस्ती करेंगे इनके साथ, हत्ता यकूनु मुमिनीन, यहां तक कि ये मोमिन बन जाए, आप जबरदस्ती इन पर दिन ठोसेंगे आप। ये फिर वही मसला है कि रसूलुल्लाह बहुत ज्यादा तड़प रखते थे कि सब ईमान लाए, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर आपका रब चाहता है तो हो जाता है ऐसा, जब आपके रब ने नहीं चाहा तो आप जबरदस्ती कैसे कर सकते। आयत नंबर 100 सुनिए, गौर फरमाइएगा, वमा कान लिनफ्सिन, और किसी नफ्स के, किसी शख्स के, किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है, ताकत में नहीं है, क्या चीज नहीं है, अंतुमिना, कि वो ईमान लाए, किसी शख्स के इख्तियार में नहीं है कि वो ईमान लाए, इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवाय इसके कि अल्लाह का इज्न, अल्लाह के इज्न के बगैर वादी ईमान में किसी को दाखिल होने का इख्तियार नहीं है। अब अगर हम ये आयत देखें तो हम कहेंगे फिर इसका मतलब हमारा तो कोई इख्तियार नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आयत के अगले जुमले से ये बात वाजे हो जाएगी, क्योंकि अगले जुमले में अल्लाह ने बताया है कि मैं किसको इज्न देता हूं, मेरा कानून क्या है, ईमान की वादी में मैं हर किसी को दाखिल नहीं होने देता, वादी ईमान में दाखिल होने की इजाजत का क्या क्राइटेरिया है, किसको मैं तौफीक देता हूं कि वो इस वादी में आ जाए, और आपको पता है ईमान यानी अमन में आ जाना, अल्लाह की सिक्योरिटी में आ जाना, अल्लाह के अजाब से बच जाना, असल में ये अमन से लफ्ज है ईमान। और कोई शख्स अल्लाह के इज्न के बगैर ईमान नहीं ला सकता, तो या अल्लाह फिर हमारा इख्तियार तो खत्म हो गया, अल्लाह फरमाते हैं नहीं, अगली बात पे गौर करो, वो तुम्हें बताएगी कि मैं किसको इजाजत देता हूं और किसको इजाजत नहीं देता। गौर फरमाइए, फरमाया वयजअलुर्रिज्स, और अल्लाह करार देता है रिज्स को, रिज्स का माना तो पता है आपको, निजासत, या मुराद गुमराही है, और अल्लाह करार देता है रिज्स अलल्लदीना ला याकिलून, उन लोगों के लिए जो अकल को इस्तेमाल नहीं करते, अकल को सही इस्तेमाल नहीं करते। क्या समझ आया आपको, कोई शख्स अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर ईमान नहीं ला सकता, और अल्लाह उनके हिस्से में रिज्स करार देता है जो अकल को इस्तेमाल नहीं करते। क्या मतलब है इसका, यानी जो आकिलाना रवैया इख्तियार करते हैं नबी की दावत के सामने, उनको अल्लाह इजाज़त देता है कि तुम आ जाओ, वरना ज़बरदस्ती या किसी लालच की वजह से वो बज़ाहिर आ भी जाए, हकीकत में अल्लाह के यहाँ वादिये ईमान में दाखिल। कितने लोग थे रसूलुल्लाह के ज़माने में कलमा पढ़ते थे, रसूलुल्लाह की रोज़ ज़ियारत भी करते थे, उनकी महफिलों में बैठते थे, तो अल्लाह ने कहा कि इन मुनाफिकों को और उन काफिरों को अल्लाह जहन्नम में इकट्ठा करेगा, कलमा ज़ुबान पर जारी करते थे, रसूलुल्लाह की रोज़ ज़ियारत भी करते थे, बल्कि कुरान कहता है कान में लग लग के सरगोशे करते थे दूसरों पर प्रेशर डालने के लिए, हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के नबी से सरगोशी करने से पहले सदका दिया करो, तो ये सारे गायब हो गए। फिर अल्लाह ने वो आयत भी नस्ख कर दी कि अगर तुम नहीं कर सकते तो अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दे दी। तो देखें इन दो आयतों का खुलासा क्या है कि अगर आपका रब चाहता तो हर कोई ईमान ले आता जो कोई रूए ज़मीन पर है, यानी आपके रब ने ये नहीं चाहा, आपके रब ने इख्तियार से चाहा कि आए। तो जब आपके रब ने नहीं चाहा तो क्या आप लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो ईमान ले आए? आपका काम तबलीग करना है, पैगाम पहुँचाना है, आप वो पहुँचाएं। और फिर और बात वाजे की आयत नंबर 100 में, किसी के इख्तियार में नहीं है कि वो वादिये ईमान में आए, अल्लाह ने क्राइटेरिया सेट कर दिया है किसको वादिये ईमान में कबूल करेगा, किसको दाखले की इजाज़त मिलेगी, जो अल्लाह की दी हुई अजीम तरीन नेमत को सही इस्तेमाल करे अल्लाह के नबी की दावत के मुकाबले में। ऐसे ही अंधाधुंध न घुसाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप रहबर मौज़म की एक किताब है ईमान, उनकी तकारीर कब इनकलाब की तकारीर का मजमू है, तो वहाँ पे कहते हैं ये तकलीदी ईमान या तअस्सुब की वजह से जो ईमान होता है इसकी कोई हैसियत नहीं। ईमान वो वैलिड है जो शऊर और अकल से इंसान जिसे कबूल करता है उस वादी में दाखिल होता है, और यही अल्लाह यहाँ पे फरमा रहा है, बल्कि अल्लाह की बात से ही उन्होंने वहाँ लेकर उसकी वजाहत फरमाई कि इसके अलावा अल्लाह ताला हकीकी ईमान की वादी में नहीं आने देता। यानी इंसान क्या करे, आयात कुरान को देखे, अल्लाह के नबी की बात को सुने और अपनी दुनियावी लज्जात दुनियावी मफादात ताल्लुकात पार्टियाँ सब को साइड पे रखे, क्योंकि वो कहेंगे कि हम में से कुछ चीज़ें तुझे छोड़नी पड़ेंगी अगर तूने इस रसूल की बात सही तरह मान ली, तो अल्लाह कहता है उसको साइड पे रखो, अकल को खालिस करके इस्तेमाल करो, तुम्हारी ख्वाहिशों के प्रेशर में ना हो, तुम्हारे दुनियावी मफादात के प्रेशर में ना हो, प्योर करके उसको अगर मेरे नबी की दावत को मुशाहिदा करवाओगे तो ये जो अकल मैंने तुम्हें दी है ये उसकी तायिद करेगी और ये तुम्हें कहेगी कि ये नबी सच कहता है। लेकिन अगर तुम्हारे ताल्लुकात दोस्तियाँ पार्टियाँ तुम्हारी लज्जात तुम्हारे कारोबार जो अल्लाह की मर्जी के ख़िलाफ़ है अगर उनको साथ रख के देखोगे इसको तो वो सारे कहेंगे इधर गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, लिहाजा साइड पर। ये आयात कहेंगे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये किताब मुबीन की आयात हैं, शायद इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते आप ए रसूल अपनी जान खो देंगे, अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर दें जिसके आगे इनकी गर्दनें झुक जाएं। इन तीन आयात से क्या पता चलता है कि ए रसूल ये जो कुरान आप इनको सुना रहे हो ये बड़ा वाज़े है, जिसका समझने का मूड हो वो आराम से इसकी बातों को समझ सकता है, और जो नहीं समझना चाह रहे आप उनके पीछे खुद को हलाक ना करें टेंशन, आप अपनी तड़प में कि ये निजात पाएं आप अपने आप को मार डालेंगे ना करें। अगर ऐसा करना होता तो आपका रब आसमान से कुछ ऐसा नाजिल कर देता कि जिसके डर से जिसके खौफ से इन सब की गर्दनें झुक जाती और इनकी जुरत ना होती कि ये इनकार करते, लेकिन आपके रब ने ये नहीं चाहा। इस वाज़े और रोशन किताब को आपने पहुंचाना है जो अल्लाह का पैगाम है। आयत नंबर 5। अब इस तबलीग और इस दावत के मुकाबले में अल्लाह न मानने वालों का रवैया बयान कर रहे हैं। शायद फरमाया वमा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन अर्रहमान मुहदसिन इल्ला कानू अन्हु मुअरिदीन, और नहीं आता इनके पास कोई भी जिक्र इन रहमान की तरफ से नया जदीद, जब भी कोई नया जिक्र कोई नसीहत आती है इनके पास तो ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उसकी तरफ रगबत नहीं करते, यानी अल्लाह की तरफ आने की इनकी रगबत ही नहीं है। ये रगबत क्यों नहीं होती, आप सोचिए, इंसान को लगता है कि मैं इसे कबूल कर लूँगा तो फिर जो मैं दूसरी वारदातें करता हूँ उनका क्या बनेगा, लिहाजा इसे कबूल ही ना करो मौजे करो। ये कुरान ने मुतअद्दिद जगहों पर ये बात ये मौजू डिस्कस किया है। एक सूरा है मुख्तसर सी सूरतुल क़ियामा, उसमें अल्लाह फरमाते हैं ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं क़ियामत के दिन की कसम खाता हूँ। वला उक्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा, मैं नफ्सिल लवामा की कसम खाता हूँ। नफ्सिल लवामा क्या है, वो आवाज़ जो इंसान के अंदर से उसके ख़िलाफ़ उठती है कि तूने क्यों किया। आप सोचें अल्लाह का सिस्टम कि मैं गुनाह की तरफ मायल हुआ, मैंने कहा कि यार अगर ये कमज़ोर सा बंदा है अगर इसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लूँ या इससे फ्रॉड करके पैसे छीन लूँ तो मैं तो रातों रात अमीर हो जाऊँगा, ये मैंने काम कर दिया, मैंने तो बड़े शौक़ से किया था, लेकिन मेरे अंदर से कोई मेरे ख़िलाफ़ बोलता है, कहता तूने बदबख्त आदमी बड़ा गलत काम किया। ये कौन है जो अंदर बोलता है, अल्लाह उस आवाज़ की कसम खा रहा है कि ये आवाज़ जो है ना इसको इग्नोर मत करो, ये तुम्हें बता रही है तेरा हिसाब होना, वरना तूने तो बड़े शौक से गुनाह किए, तेरे अंदर तेरा मुखालिफ कौन पैदा हो गया, वो अल्लाह ने पैदा किया। नफ्स लवामा, मलामत करने वाला बुराइयों पर। वला उक्सिमु बिन्नफ्स लवामा, मैं कसम खाता हूँ इस आवाज़ की जो तेरे गुनाह पर तेरी बुराई पर तुझे तेरे अंदर से मलामत करती है। ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں کٹھی نہیں کریں گے دوبارہ؟ بلا، ہڈیاں تو چھوڑو، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی دوبارہ ویسے ہی بنا دیں گے، یہ جن کو ہم آج فنگر پرنٹس کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی ویسے بنا دیں گے جیسے تمہارے پہلے تھے دنیا میں. مجرم کو پہچاننے کے لیے آج کل فنگر پرنٹس مثلا استعمال کیے جاتے ہیں. وہاں پہ پھر اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امام، یہ بات نہیں ہے قیامت کو جھٹلانے کا شور مچایا ہوا انہوں نے، بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے آگے رکاوٹ کوئی نہ ہو، اور قیامت اور اللہ اور دین اس کی لذات حرام لذات میں رکاوٹ نظر آتے ہیں تو یہ ان کو جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، آزاد ہے انسان. یہ سارا کس لیے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اپنے سامنے والی رکاوٹوں کو ہٹاتا جائے اور جو اس کا دل کر رہا ہے وہ کرتا جائے، اسے ٹینشن بھی کوئی نہ ہو. یہ انسان کی ساری گیم ہے. اس وجہ سے انسان کا عقل مائل بھی ہوتی ہے کہ یہ رسول کی بات سچ ہے، لیکن اس کی اپنی جو خواہشات ہیں وہ سامنے آ کے خوبصورت چہرہ بنا کے میک اپ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ تو رسول کی بات مان کے ہمیں چھوڑ دے گا، مجھے بھی چھوڑ دے گا، گزارا کر لے گا میرے بغیر. وہ کہتا ہے رسول کو چھوڑ دو، لیکن یہ نہیں چھوڑی جاتی. اور نہیں آتا ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر، نئی نصیحت، الا مگر یہ کہ ان کا مزاج یہ ہے کانو عنہ معرضین، یہ منہ پھیر لیتے ہیں، یہ بے رغبت ہو جاتے ہیں، پشت کر لیتے ہیں، اس کی طرف نہیں آتے. آیت نمبر 6 فقد کذبوا، تو یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی یہ حرکت کر کے یہ جھٹلا رہے ہیں. فسیأتیہم، تو ان قریب ان کے پاس آنے والی ہیں انباء، خبریں، نبا کی جمع ہے انباء. آپ کو اگر یاد ہو جو ذرا حضرت ضیاء الحق کے دور میں جو تھے اور ہوش و حواس رکھتے تھے یعنی بڑے تھے، تو ایک خبریں آتی تھی عربی میں انباء، الانباء یعنی خبریں، ٹھیک ہے. چونکہ ضیاء الحق صاحب پاکستان پر اسلام نافذ کر رہے تھے تو عربی کی خبریں چلاتے تھے اس وقت، اور آخری ایک پروگرام ہوتا تھا فرمان الہی، تو میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو اس وقت، تو وہ آخر میں وہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ اب ہماری نشریات کا آخری پروگرام فرمان الہی نشر ہوگا، تو میں سمجھتا تھا کہ آج یہ آخری ہے، اس کے بعد نہیں ہوگا. اگلے دن پھر وہ آیا ہوتا تھا تو میں سوچتا تھا یہ کیوں کہتی ہے ہر روز آخری پروگرام، بعد میں سمجھ آیا کہتی آج کا آخری ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ یہ میں نے اس خبیث کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ انباء سے میرے ذہن میں آیا، تو جب یہ اس نے یہ کہا تھا کہ اصل میں خود اس نے نافذ ہونا تھا پاکستان پر، تو اس نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ، اور مکار نے ریفرینڈم یہی کرایا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام ہو تو فلان ہو تو ضیاء الحق کو ووٹ دیں اور ورنہ نہ دیں، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بلند سے بلند درجات عطا فرمائے شہید عارف حسین الحسینی کو. تو انہوں نے ضیاء الحق سے کہا تھا کہ اپنے 5 فٹ کچھ انچ کے قد پہ جو اسلام نافذ نہیں کر سکتا، وہ اتنے بڑے پاکستان کی سرزمین پر اسلام کہاں سے نافذ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اس کے دور میں جب اس کا عروج تھا تو بہرحال شہید عارف نے یہ بات کی تھی، اور بہرحال ان کے ساتھ وہی ہوا جو ایسی بات کرنے والوں کے ساتھ بالعموم دنیا کے ظالم اور جبار لوگ کیا کرتے ہیں. اور ان کے پاس فقد کذبوا، تو بے شک انہوں نے جھٹلا دیا. فسیأتیہم، تھوڑا ویٹ کریں، بہت جلد ان کے پاس آنے والی انباء، خبریں. اچھا، نبا جو ہوتی ہے یہ بڑی خبر کو کہتے ہیں، کیونکہ خود خبر بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی وہی ہے خبر. لیکن اگر خبر کوئی بہت امپورٹنٹ ہو، معاملہ بڑا ہو، تو عربی زبان میں اس کو پھر نبا کہتے ہیں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، عن الخبر العظیم نہیں کہا، کہ ایک بڑی خبر جو بڑی عظیم ہے اس کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, ان قریب آنے والی ہیں ان کے پاس اس کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں, جس کو یہ سنجیدہ نہیں لیتے. اللہ فرما رہا ہے بہت جلد بڑی خبریں ان کے پاس اس معاملے میں آنے والی ہیں, یعنی اللہ کی گرفت میں آنے والے. آیت نمبر 7, اولم یرو. اب یہ قرآن مجید آپ جب مختلف صورتیں پڑھیں گے یہ انداز ہے, ایک طرف سے توجہ دلا کر پھر اس کائنات کی کسی دوسری چیز کی طرف فکر کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے. اب یہاں پر ان کو بھی اور ہر قرآن پڑھنے والے کو, یعنی اصل میں ذکر انہی کا ہو رہا ہے جو جھٹلا رہے ہیں, جو نہیں مان رہے, لیکن دعوت عمومی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 7 میں, اولم یرو الی الارض, کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا جس زمین پہ یہ رہ رہے ہیں, اس زمین پہ کیا کیا اگ رہا ہے, کیسے اگ رہا ہے, مختلف رنگ مختلف ذائقوں والے پھل فصلیں, کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا. کم انبتنا فیہا, کتنی زیادہ ہم نے اگائی ہیں اس میں, من کل زوج کریم, نفیس اگنے والی چیزیں. انہوں نے غور نہیں کیا کہ جو کھاتے ہیں اپنی غذا کی ضرورت پوری کرتے ہیں, دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں, یہ نفیس چیزیں زمین میں جو اگ رہی ہیں ان پر کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ کون ہے کہ جو ان کو اگاتا ہے اور کون ہے کہ جو ان کو ان کے لیے فائدہ مند بنانے والا ہے. کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی وافر مقدار میں ہر قسم کی نفیس نباتات اگائی ہیں. آیت نمبر 8, ان فی ذلک لآیتن, یقیناً اس میں نشانی ہے, یہ زمین کے اندر سے اگنے والی چیزوں میں نشانی ہے, اشارہ ہے, علامت ہے, کس کی طرف, خالق کی طرف. ان فی ذلک لآیتن, یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے کہ اس کو غور کرو, کیوں کہاں سے اگ رہی ہے, یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے. اگر یا تو اس کو حل کرو, سراغ لگاؤ کہ بیس کیا ہے, اور اگر سراغ نہیں لگا سکتے تو پھر ذرا احتیاط کرو, جب تک تمہیں بات پتہ نہیں چلتی احتیاط کرو, جھٹلاؤ مت اللہ کو, خالق کو مت جھٹلاؤ. تم دیکھو کتنے خوبصورت پودے ہیں, کیسے زبردست طریقے سے ان کے اگنے کا پروسیس ہے, آسمان سے دھوپ لیتے ہیں, زمین سے پانی لیتے ہیں, اپنی غذا بناتے ہیں, تمہارے لیے آکسیجن بھی مثلاً پیدا کرتے ہیں, ساری کی ساری چیزیں ہیں. کچھ تو کہتی ہیں تم سے کہ ہمارا بھی کوئی ہو سکتا ہے خالق ہو, ہم ایسے ہی آٹومیٹیکلی نہیں بنتی. تو احتیاط کرو. عقل کیا کہتی ہے کہ جب انسان اگر کہیں خطرہ فیل کرے تو عقل کہتی ہے احتیاط کر, جب تک کہ خطرہ کلیئر, تھریٹ کی کلیئرنس نہیں ہو جاتی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یا تو سراغ لگاؤ کہ یہ کون کر رہا ہے, اور تمہارے لیے ثابت ہو جائے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, پھر کرو آزادی. لیکن اگر نہیں ہے تو یہ پوری کائنات کا نظام تمہیں رب کی طرف اشارہ کر رہا ہے, خالق کی طرف. اس کا نظم, اس کی آپس میں, اس کا آپس میں مربوط ہونا پوری کائنات کے نظام کا, یہ تمہیں اشارہ کر رہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے جو اس نظام کو چلا رہا, اور اتنا بڑا عالم ہے کہ جس کو تم اتنی سائنس کی ترقی کے بعد ابھی اس کے تم گرے کھول رہے ہو کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیسے کیسے فنکشن کرتی ہیں. تو وہ کتنا بڑا عالم ہے جس نے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اس کو بنا دیا, اور یہ سارے قوانین اور صلاحیتیں اور خصوصیات ان چیزوں میں رکھ دی ہیں جو تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں, جن کو تم اب ڈسکور کر رہے ہو. تمہیں تو اس عالم کے آگے جھک جانا چاہیے, اور اس کی کتنی قدرت ہے کہ جو اس نے اتنی عظیم کائنات بنا دی. تو یہ الگ, ان نفی ذلک لآیتن, اس میں نشانی ہے, اشارہ ہے, اگنور مت کرو اس کو. لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, وما کان اکثرہم مؤمنین, لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے, ایمان کی طرف نہیں آتے. وجہ کیا ہے, آزادی, جو میرا دل کرے وہ کرو. ورنہ آپ سوچیں نا, ایمان میں کیا رکاوٹ ہے. ابھی شب قدر آئیں گی, کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے صدق کے دل سے توبہ کرنے, کیا رکاوٹ بنتی ہے, لذتیں. جیسے میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج میں پکی توبہ کروں, میں گناہ نہیں کروں گا, سارے گناہ لائن لگا کے बन सवर के आके खड़े हो जाते मेरे तसव्वुर में कि यार तू हमें छोड़ देगा शब कदर के बाद। फिर मैं कहता हूँ या अल्लाह मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, लेकिन मैं ज़बान से हम नहीं कहते लेकिन हमारे दिल के अंदर ये चल रही होती कि कोशिश करेंगे अल्लाह फिर गफूर रहीम है। वो इरादा ही पैदा नहीं होता। क्यों पैदा नहीं होता? कुछ चीज़ों को हम छोड़ना नहीं चाहते। अगर छोड़ने पर तैयार हो जाए तो फिर तौबा में क्या रुकावट है? इसी तरह ईमान लाने में क्या रुकावट है काफिर के? वही के जो जिस सिस्टम के तहत मेरी ज़िंदगी गुजारी है तो मेरे ऊपर पाबंदियाँ लग जाएगी कुछ, जबकि अल्लाह कहते हैं कि ये पाबंदियाँ ये तेरी आजमाइश के लिए हैं, ठीक है। तू मौजे करना चाहता है तो मैंने मौजे करने के लिए एक जगह बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है, उसमें तू तसव्वुर नहीं कर सकता कि कितनी मौजे करेगा। ये दुनिया तेरे इम्तिहान के लिए, तू सोच के तू कुछ अर्सा पहले नहीं था फिर तू वजूद में आया, फिर तेरे जैसे सारे जो आए थे वो चले भी गए और तू भी चला जाएगा। तो फिर अकल तो ये कहती है कि इस बीच के जब तूने जाना ही है तो फिर इस दरमियान वाली ज़िंदगी को कुछ ज़रा सोच के कुछ ज़रा एहतियात से किसी प्लानिंग के साथ गुजार। मेरा ये वादा है कि तुझे मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करूँगा और फिर एक हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जो खुशबख्ती की भी हो सकती है और बदबख्ती की भी हो सकती है वो तेरे इंतज़ार में है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसमें यकीनन एक निशानी ज़रूर है मगर इनमें से अक्सर नहीं मानते। इन्होंने मोमिन नहीं बनते का तर्जमा क्या किया है? नहीं मानते, चूँकि मोमिन का माने मान जाने वाला, इकरार करने कर लेने वाला, तस्लीम कर लेने वाला। व इन रब्बक, आयत नंबर 9, व इन रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और यकीनन तेरा रब लहुवल अज़ीज़, तो वो यकीनन अज़ीज़ है। अज़ीज़ किसे कहते हैं? ना काबिल शिकस्त। असल में जो अरबी का लफ्ज़ है इज़्ज़त, जिसे हम उर्दू में एहतराम के माना में इस्तेमाल करते हैं, अरबी ज़ुबान में इज़्ज़त का असल में माना है सख्ती। ऐसी सख्ती जिसके आगे हर चीज़ झुक जाए, कोई उसे तोड़ ना सके, उससे टकरा के सरनिगुं हो जाए, उसे तोड़ ना सके। तो असल में अज़ीज़ उस हस्ती को कहते हैं जो ना काबिल शिकस्त होती। तो जब अल्लाह अज़ीज़ का लफ्ज़ लाता है तो गोया के धमकी दे रहा होता है कि जब मैं पकड़ूंगा तो फिर कोई ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें छुड़ा ले, इस अज़ीज़ को शिकस्त दे दे और मुझसे आकर तुम्हें छुड़ा ले, तो ऐसा कोई नहीं। लेकिन अगर मान लोगे अर्रहीम, तो उसकी दायमी और अबदी रहमतें तुम्हें मिलेंगी। इन रब्बका, बेशक तेरा परवरदिगार लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, वो ना काबिल शिकस्त, वो ज़बरदस्त, वो सब पर गालिब आने वाला, ये सारे माना किए जा सकते हैं इसके, और रहीम है। आयत नंबर ये 9 थी, आयत नंबर 10 पे हम तमाम करते हैं। हज़रत मूसा का किस्सा है जो इंशाल्लाह जो असल इस समझ लें कि इस महफिल में हमने डिस्कस करना है। वह इध ना दा रब का मूसा, और जब तेरे रब ने मूसा को पुकारा, अन तिल कौम ज़ालिमीन, के ज़ालिमों की कौम के पास जा। जब तेरे रब ने मूसा को पुकारा और उसकी ड्यूटी लगाई कि तुमने फिरौन की कौम के पास जाना है, तो इन अगली आयात में इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो हम इसको अगले दरसों में डिस्कस करेंगे। ये फिरौन और हज़रत मूसा के दरमियान एक मुकालमा है पहले, फिर हज़रत मूसा का जादूगरों के साथ मुकाबला है, और फिर जादूगरों के भी ईमान ले आने के बाद फिर फिरौन के अगले इकदामात हैं। और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये हालात हमारे पाकिस्तान के मौजूदा हालात से बहुत मिलते जुलते हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। और कुरान का काम भी यही है। आप मेरी बात से एग्री ना कीजिए, खुद सोचिएगा, अगर हो सके तो पढ़ के लाएं इनको, खुद पढ़ें गौर से और देखें कि क्या चीज़ कहाँ मैच करती है। फिरौन का डायलॉग किससे मैच करता है और जो जादूगर थे उनकी हरकत किससे मैच करती है, ठीक है। और वरना मैं कोशिश करूँगा कि ये मैच आपको ढूंढ के दिखाऊँ कि ये किरदार होते हैं, मुख्तलिफ ज़मानों में बदलते रहते हैं, कि जब भी सच्चाई और बातिल, हक और बातिल टकराता है, तो अल्लाह के कुरान ने ये टकराव दिखाए हैं कुरान में ताकि पहचानने में आसानी हो कि हक के तेवर कैसे होते हैं और बातिल के तेवर कैसे होते हैं और बातिल के हथकंडे कैसे होते हैं और उसके मकर कैसे होते हैं, और हक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के करने वाला। ये सारा अल्लाह ने कुरान में दिखाया क्यों? ताकि अपने अपने ज़माने के, जैसे हम कहते हैं ना, अपने ज़माने के यजीद को पहचानूं। तो ये यजीद हो या फिरौन हो, ये पार्टी एक ही है, और मूसा हो या इमाम हुसैन हो, पार्टी एक ही है। अक्लमंद वो है कि जो इनको पहचानने की सलाहियत रखता हो कि आज मेरे ज़माने में कौन सी पार्टी कौन सी वाली है, ठीक है, या किस से करीबतर है। तो फिर अपने लिए ज़ाहिर है कि इंसान सही रास्ते का इंतखाब कर सकता है। परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार बेहक़ के कुरान करीम और बेहक़ के मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब को माह मुबारक रमज़ान के बेहतरीन आमाल जो तेरी निगाह में बेहतरीन है अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार बिलखसूस तेरी किताब से, कुरान करीम से उन्स, मोहब्बत और एक कभी न टूटने वाला हादी और पैरोकार का रिश्ता बरकरार करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार हाजरीन की जायज़ हाजात शरईया को पूरा फरमा, मुश्किलात को ए परवरदिगार आसान फरमा, हम सब के रिज़्क़ के हलाल में वसअत व बरकत अता फरमा। ए परवरदिगार जो मोमिनीन बीमार हैं शिफाए कामिला व आजला अता फरमा। ए परवरदिगार हमारे मरहूमीन की बख्शिश और मगफरत फरमा, हम सब का खात्मा खैर पर और ईमान पर फरमा। हमारे अजीज़ वतन पाकिस्तान पर रहम फरमा और हमारे कल को हमारे इस पाकिस्तान के स्याह आज से बेहतर करार दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद।